नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाज नहीं आ रही थी, किस तरफ आवाज आ रही? थोड़ा पूरा नहीं। हाँ बस, तो अभी जिस जगह पर हम आए हैं उसका नाम है राबड़ वन, एक और नाम है रावल वन। राबड़ वन इसलिए बड़ा है नाम उसका, कृष्ण ने यहाँ पर रबड़ी खाया था। इसका एक बहुत सुंदर ब्रजवासी दोहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। मतलब क्या? शेष यानी शेषनाग, महेश यानी शंकर जी, गणेश यानी गणपति, दिनेश यानी सूरज सूर्यदेव, सुरेश यानी इंद्रदेव, ये सब लोग इन भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं, उनको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं और ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं। और वो अनादि हैं, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, ये भी उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन कोशिश करते रहते हैं, फिर भी वो ध्यान में उनको पकड़ने का प्रयास करते रहते हैं। नारद से शुक व्यास रटे पचिहारी तव पार न जावे। मतलब नारद से लेकर सुखदेव जी, व्यास देव जी, जितने सारे बड़े बड़े लेखक हैं, जो लोग वक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारा प्रवचन किया है, बहुत सारा शास्त्र लिखा है, फिर भी इनकी पार किसको लगी नहीं है, मतलब इनका अंत किसी को प्राप्त नहीं हुआ है अब तक। जैसे सागर कैसे होता है, बहुत गहरा होता है और बहुत अथाह होता है, यानी कि उसकी बाउंड्रीज कौन पकड़ नहीं सकता है और उसकी गहराई भी कौन पकड़ नहीं सकता है। उसी तरह से सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी ठाकुर जी का अंत जो है वो कोई पकड़ नहीं सकता है कि कहाँ उनका व्यक्तिमत्व का एंड है, कहाँ सीमा है उनकी व्यक्तिमत्व की, उन्हें समझ सकते हैं। तो यह है भगवान का वर्णन कि भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को, ध्यानियों को भी प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे कहते हैं कि ध्यानी जन, तपस्वी जन जो है वो लाखों लाखों जन्म तक तपस्या करते हैं, उन पर ध्यान करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी भगवान के 20 नाखून हैं, है ना, उसमें से एक नाखून में से अनंत किरणें निकलती है, उसमें से एक किरण का दर्शन भी नहीं होता है उनको, इतना सब करने के बाद भी। इतने हमारे भगवान जो है वो दुर्लभ हैं, किसी को सहजता से प्राप्त नहीं होते हैं। और हमारे इस्कॉन लैंग्वेज में कहते हैं कि ही इज अ वेरी श्रूड लवर। जब तक आप अनन्य भक्ति नहीं करते तब तक वो आपको प्राप्त नहीं होते हैं। आपके पास 0.00001% भी कोई और मन में अटैचमेंट होगी तभी भी नहीं प्राप्त होते हो। जब 100% कोई व्यक्ति शरण में आता है तो ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, रूप गोस्वामी समझाते हैं इस बात को कि जब कोई 100% शरणागत होता है तो भगवान उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति का एक छठवां लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षिणी। लेकिन श्री कृष्ण आकर्षिणी शुद्ध भक्ति जो करता है, भगवान उसको अपने आप को बेच देते हैं, इसलिए वो अपने आप को बेचने के लिए बड़े बेचने के पहले सावधान रहते हैं। 0.00001% भी किसी का और किसी में दिल है तो वो नहीं प्राप्त होते, क्योंकि अगर वो 100% हो गए तो भगवान फिर उसके हो जाते हैं। तो ये जो वर्णन दिया है ना कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सब लोग तपस्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है उनको, एक किरण भी नज़र नहीं आ रही है, सुखदेव व्यासदेव और नारद जी बोलते जा रहे हैं, वर्णन करते जा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, वही भगवान क्या लिखा आगे, बहुत ध्यान सुंदर वाक्य है, वही भगवान ताही यानी अहिर की छोरियाँ छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। उसी भगवान को जो इतने दुर्लभ हैं, अहिर नाम की यहां पर जाति है, मतलब कोई ब्राह्मण ऐसे बड़े जाति नहीं है, सिंपल लोग हैं बहुत। तो अहिर की छोरियां यानी गोपियां, यहां की जो गोपियां हैं वो छचिया पर, मतलब एक छोटे सा कमंडल कह सकते हैं आप, थोड़ा सा ग्लास कह सकते हैं, कोई पात्र कह सकते हैं, उतने सारे उतने से छास के लिए वो इस ठाकुर को जो दुर्लभ है उसको बार बार नचाते हैं। कैसे मालूम है? थोड़ा छास दे दिया, फिर बोला और दो, तोले नहीं नाचो, फिर वो कुछ नाच दिखाएंगे, फिर थोड़ा और देंगे, फिर और मांगेंगे, बोला नहीं और नाचो। तो छचिया पर छाछ के लिए उसको नाच नचाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने 100% अपना हृदय उनको दे दिया। भगवान कहते हैं कि उन्होंने वैकुंठ का इतना ऐश्वर्य उनके पास, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, अनंत कोटि लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। और आपको ये बात बताना जरूरी है कि लक्ष्मी के शरीर में बहुत सारे गहने होते हैं, पता है ना आपको, और लक्ष्मी सबको धन को देने वाली है। तो उनके पास कितना धन होगा? तो एक ऐसे झूठ मूठ की लड़ाई में, लक्ष्मी नारायण की लड़ाई में एक कंगन टूट गया था, ऐसे ही वाद विवाद में, तो लक्ष्मी जी ने वो टूटा हुआ कंगन ऐसा फेंक दिया था गुस्से में। उस पे सारे ब्रह्मांड का इकोनॉमिक्स चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे कंगन है, गले में भी है, कमर में भी है, पैर में भी है, हाथ में भी है, कान में भी है, सर पे भी है, ऐसे बहुत सारे गहने पहनती हो। और ऐसी लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, ऐसी कोटि कोटि लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है, तो कितना ऐश्वर्य होगा वैकुंठ में, सोचो आप। लेकिन इतने सारे ऐश्वर्य को भी वो त्याग करके यहां पर चोरी करके मक्खन और छाछ पीने के लिए आते हैं, ये उनकी विशेषता है। वो भी उनका ही है, छाछ मक्खन सब उनका ही बनाया हुआ है, उनका ही, वही स्वामी है उसके। लेकिन फिर भी गोपियों के घर में जाकर चोरी कर करके छुप छुप के दंड पाते हुए, गालियां खाते हुए उनका मक्खन और छाछ चुरा चुरा के खाते हैं, और एक एक कण के लिए, छाछ के मक्खन के लिए नाच करके दिखाते हैं उनको। तो ये इस भूमि की महिमा है। इस भूमि में वो सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं देव स्वामी हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं निर्माता हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, सारा पत्ता पत्ता मेरे इच्छा के बिना हिलता नहीं है, ये सब सत्य है। लेकिन इस जगह पर वो सारा अपना जो पोजीशन है ना, वो सब छोड़ देते हैं और एकदम मिस्टर नोबडी बनकर आते हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग। और जब वो खुद मिस्टर नोबडी बनकर आते हैं तो हमको भी संदेश दे रहे हैं, आपको भी यहाँ पर आना है तो मिस्टर नोबडी बनकर ही आना होगा, सारी टोपियाँ उतारना पड़ेगा, है ना। हमारे पास बहुत टोपियाँ हैं, हम डॉक्टर है, हम ये है, फलाना है, माँ है, पिताजी है, धनवान है, डॉक्टर है, मैनेजर है, बिजनेसमैन है, गाते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे हमारे हमारी अलग अलग पहचान हैं। वो सारी टोपियाँ यहाँ पर उतार कर आना है। साधु लोग कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण को बम्बई वाले छोड़कर यहाँ पर आना है। बम्बई वाले सब रजोगुण आदतें, पहनने की, खाने की, बोलने की, वो सब यहाँ पर लेके नहीं आना है, वो सब छोड़ के आना है यहाँ पर। यहाँ पर यक कश्चित बन के आना है, यानी तुच्छ बनकर आना है, कोई वैल्यू नहीं, ऐसे बनकर आना है, तब जाकर यहाँ पर ठाकुर जी हमारे हो जाते हैं, उन लोगों के हो जाते हैं। इसलिए इस भूमि में भगवान ने गोपियों का छाछ पिया था और रबड़ी भी खाई थी, इसलिए उसका रावणवन नाम पड़ा है। और रावणवन की और लीला है कि यहाँ पर भगवान ने रास लीला भी रचाई है। एक और लीला है कि भगवान यहाँ पर एक बार बंसी बजा रहे थे बैठकर अकेले, जैसे ही बंसी बजी तो मोरों ने सुनी, तो मोर जमा हो गए और नृत्य करने लगे, और जैसे मोर नृत्य करने लगे तो बादल बोले हम भी पीछे क्यों रहे, जब मोर नाच रहे तो हमको भी आना चाहिए। तो वो मोर भी नाचने लगे और बादल भी आ गए, और बादल आए तो क्या होता है फिर, वर्षा होती है, तो वर्षा हो गई, तो वर्षा हो गई तो भगवान के कपड़े जो है ना पीताम्बर और सब भीग गया, सब उनके नीले नीले बदन को चिपक गया। और ये सब देखकर गोपियाँ आई, वो देख रहे हैं अच्छी वर्षा हो रही है, और मोर नाच रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, और भगवान के सब कपड़े भीग गए हैं, लेकिन फिर भी मुरली बज रही है। वो कह रहे हैं कि ये कैसे बंद नहीं हो रही है। और मुरली का और गोपियों का थोड़ा सा बैर था, ये बैरन इतनी वर्षा हो रही तो भीख के बंद नहीं हो रही है, फिर भी बज रही है, क्योंकि वो थोड़ा बैर क्यों करते थे कि वो दिन रात भगवान के ओटों को लगी रहती है और दिन रात ये भगवान के पास जाने के लिए तरसती रहती है गोपियां, और ये दिन रात भगवान के ओटों को लगी रहती है। तो बोले ऐसा कैसा पुण्य किया है तुमने कि सखाओं के साथ, सखियों के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ, सब समय गोपियां, सब समय मुरली जो है इनके ओटों से लगी रहती है। कितना, कौन सी तपस्या की है इन्होंने, ऐसे गोपियां मुरली के भाग्य का वर्णन करती है। तो यहाँ पर भगवान ने बारिश में भीग कर मुरली बजाई है और गोपियों ने एक तरह से क्या कहते हैं, बैरन तो कहते हैं लेकिन एक तरह से उनका गौरव कर रहे हैं वो कि मुरली कितनी भाग्यशाली है। तो ये भी लीला यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर एक और लीला हुई है, उसको कहते हैं सांझी लीला। एक सांझी उत्सव होता है, अभी कैसे बताएं आपको, वो दिवाली के आसपास होता है और सारी गोपियाँ जो है वो अपने घर पे सांझी बनाती, सांझी यानी गोबर का देवी का स्वरूप बनाते हैं या कोई नक्शा बनाते हैं या और कोई तुलसी बनाते हैं, सब गोबर का बनता है, कुछ दीवार पे बनता है, कुछ जमीन पे बनता है और उसका पूजन होता है। और एक सांझी देवी भी है, एक पार्वती देवी का एक स्वरूप है सांझी देवी, उसको ये सांझी बना के सब गोपियाँ पूजती हैं। आज भी ये ब्रज में रिवाज है और राधा रानी ने भी सांझी पूजी थी, सांझी पूजा, सांझी देवी की पूजा राधा रानी ने भी हर साल किया है। तो ये सांझी लीला का भी स्थान है। यहाँ पर बड़े बड़े पुष्प हुआ करते थे और वो पास में पाडर वन है, पाडर वन भी रासलीला का स्थान है, पाडर वन, ये रावल वन है उसके आगे पाडर वन है, उसके अंदर बहुत पुष्प हुआ करते थे, वहाँ पर गोपियाँ फूल बिनने के लिए आती थी और सांझी लीला मनाती थी। तो ऐसे बहुत लीलाएँ हैं। और ये जो स्थान है ये ब्रजेश्वर महादेव है, ये बड़ा अद्भुत स्थान है, इसका आप केवल दो मिनट के लिए आंख बंद करके अनुभव कीजिए, इतना दिव्य रमणीक स्थान है ये, बहुत ही सुंदर स्थान। जो हम ब्रज ब्रज कहते हैं ना, वो ब्रज का असली अनुभव ऐसी जगह मिलता है जहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बने हैं, कोई गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, कोई टेम्पो नहीं बज रहे हैं, हॉर्न नहीं बज रहे हैं, शांति है, पक्षी कू-कू कर रहे हैं, सुंदर वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष विराजमान हैं और कोई रजोगुण तमोगुण नहीं है, केवल भगवान का निवास है, भगवान का स्मरण है, ऐसा दिव्य अनुभव इन जगह पर प्राप्त होता है। तो बोले हम पाँच मिनट भी यहाँ बिताएंगे तो वो दिव्य अनुभूति हमारे पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारे आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। तो यही ब्रज है और यही चेतना को, यही अनुभव को आपको अपने हृदय में संभाल कर रखना चाहिए एज अ ट्रेजर ऑफ लाइफ। और जब भी दिल उदास हो जाए तो इसको याद करना है क्योंकि ये चिरंतन सत्य है, बाकी उदासी आनंद सुख दुख जो चलते रहता है लेकिन ये चिरंतन सत्य है और ये ऐसे ही रहेगा और हमारे हृदय में बसाकर उसको रखना है। कल भारत दृष्टि से चेंज भी हो जाएगा, हमारे हृदय में जो अनुभव वो चेंज नहीं हो सकता है, वो चिरंतन है। तो वो अनुभव बटोरने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। तो ब्रजेश्वर महादेव इसकी लीला ऐसी है कि ये महादेव का स्थापना वृषभानु महाराज ने किया था और वृषभानु महाराज ने इनका पूजन भी किया था। राजा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए वृषभानु महाराज ने इनका पूजन किया था। उधर काम्य वन में और एक महादेव जी है कामेश्वर महादेव, उनका भी पूजन वृषभानु महाराज ने किया था राजा रानी को प्राप्त करने के लिए। तो ये वृषभानु महाराज की तपस्थली है, क्या लिखा है ऊपर, वृषभानु महाराज तपस्थली। हाँ, सूर्यदेव के अवतार थे वो वृषभानु महाराज, भगवान की इच्छा से सूर्यदेव ने वृषभानु महाराज के रूप में अवतार लिया था। पूर्व जन्म में सुचंद्र थे वो और कलावती जो तीन महासतियों में से एक सती थी, दूसरी दो महासतियां थी, एक सीता की माता बनी, एक पार्वती की माता बनी और एक राधा की माता बनी। ये तीन महासतियां, उनको शाप प्राप्त हुआ था वैकुंठ में, उन्होंने चार कुमारों को वैकुंठ के दरवाजे पर प्रणाम नहीं किया ये सोचकर कि बालकों के क्या प्रणाम करें, तो चार बालकों को शाप दिया कि आप पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगी। उतने भगवान विष्णु वहां पर भाग भाग के आए, उन्हें बताया कि आप इसको शाप मत मानना, ये मेरी लीला है, आगे मुझे लीला करनी है, इसलिए पृथ्वी पर आपको भेजना है। मेरी तीन जो महाशक्तियां हैं उनकी माता बनकर आप पृथ्वी पर जन्म लोगी और मेरी तीन महाशक्तियां आपके कोख से जन्म लेगी। तो एक बनी पार्वती की माँ, एक बनी सीता की माँ और एक बनी राधा रानी की माँ, जो पिछले जन्म में कलावती थी, इस जन्म में वो कीर्तिदा बनी और कीर्तिदा की पुत्री राधा रानी। तो ये उनका इतिहास है। सुचंद्र और कलावती ने पिछले जन्म में 12,000 वर्ष तप किया था और भगवान की दिव्य शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने का इच्छा व्यक्त किया था ब्रह्मा जी के पास। तो जब सुचंद्र और कलावती की तपस्या सफल हुई, ब्रह्मा जी दर्शन दिए, तो ब्रह्मा जी बोले कि सुचंद्र, भगवान सुचंद्र ने कहा कि हमको मोक्ष दो, तो उन्होंने कहा ठीक है, मोक्ष दे दिया। जैसे ही कलावती ने सुना था, कलावती ने बहुत क्रोध किया कि इनको अकेले को कैसे हम मोक्ष दे सकते हैं, हमारा क्या होगा। चूंकि ये महासती थी, ब्रह्मा जी भी डर गए और कहा सॉरी सॉरी, माफ करना, वो इतना जल्दी मोक्ष नहीं देंगे, आप दोनों ना हमारे धाम में रहो, ब्रह्मलोक में रहो, और यथावकाश भगवान की शक्ति जो है आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी, तो दोनों पृथ्वी पर आना और उसके बाद दोनों भगवत धाम चले जाना। ब्रह्मा भी डरते हैं महासतियों से, याद रखना, जो लोग होते हैं ना पतिव्रत्य होते हैं ना स्त्रियां, ब्रह्मा जी भी डरते हैं उनसे, क्योंकि वो पतिव्रत्य स्त्री का ऐसा तेज है जो दुनिया की कोई शक्ति उसको काट नहीं सकती। इसलिए स्त्री का शक्ति और अलंकार जो है वो पतिव्रत्य है, वो स्त्री को इतनी शक्तिशाली बना देता है कि कोई भी शक्ति दुनिया की उसको काट नहीं सकती। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने गलती से पति को अलग से वरदान दे दिया, तो डर गए वो इनके प्रश्न से और तुरंत एडजस्ट कर दिया पूरा अपना वरदान और खुद को पहले संभाला, बाद में इनकी इच्छा भी पूरी कर दी। तो इस तरह से वृषभानु महाराज, वो वृषभानु महाराज है सुचंद्र, जो अगले जन्म में वृषभानु महाराज बने और यहाँ पर आके उन्होंने, उनको 85 साल तक बालक नहीं हुआ था, संतान नहीं हुई थी, तो इन्होंने यहाँ पर आके तपस्या की। और ब्रजेश्वर महादेव जो है ना, वो अभी भी खेत में है ना, ये है ना, तो आज से कुछ 25-30 साल पहले की बात है, ये बहुत अभी की बात है ये। तो यहाँ पर जो किसान खेत बनाता है, वो उसको बार बार वो कुछ अटकता था उसके हल में, हल जब बनाते ना, हल चलाते हैं, तो हर बार इस जगह पर कुछ अटकता था। तो उसने एक बार थोड़ा कुतूहल से खुदाई किया, तो उसको शिवलिंग दिखाई पड़ा, तो उसको लगा कि, देखो सुनिए बराबर से, तो उसको लगा कि अरे इस खेत में क्यों होना चाहिए, उसका अच्छी जगह पर हम स्थापना कर सकते हैं, तो खुदाई करके निकालेंगे उसको और कहीं अच्छी जगह उसको मंदिर बनाएंगे उसका, ताकि लोग आ जा सकते हैं, ये खेत में कौन आएगा, ऐसे उनको लगा। तो इसने खुदाई करना आरंभ किया, जितनी खुदाई करते गए उतना लिंग उनको जमीन के अंदर मिलता ही गया। कई फीट खुदाई किया, फिर भी वो जो शिवलिंग का जो अंग है उसका अंत ही नहीं प्राप्त हुआ। तो रात हो गई, तो फिर रात उन्होंने छोड़ दिया, बोला कल अभी खोदेंगे आगे उसका सो गए। तो स्वप्न में शिवजी महाराज आए, उन्होंने कहा कि मैं ब्रजेश्वर महादेव हूँ और ये मेरा चिरंतन स्थान है, इससे आप मुझे निकाल नहीं सकते हो, पाताल तक भी खोदोगे तो भी मुझे प्राप्त करोगे वहीं तक। तो इसलिए उन्होंने उनको वहीं रखा और आज भी ये खेत में ही है ब्रजेश्वर महादेव। तो ऐसे यहाँ के एक एक स्थान जो है ना, वो बहुत दिव्य स्थान है, एक एक लीला स्थली जो है ना दिव्य स्थली है, और इसका जो दिव्यत्व है हमको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, ब्रजेश्वर महादेव को कहीं और बिठा सकते थे, लेकिन ब्रजेश्वर महादेव भी इतने क्या कहते हैं उसको, फिक्स्ड हैं, हाँ, कि उनको भी वही रहना है जहाँ पर वृषभानु महाराज ने उनका पूजन किया था। उनके लिए भी बहुत क्या कहते हैं प्रिविलेज है उनके लिए, कैसे भगवान की दिव्य लीला में हमको सहभागी होने का भाग मिला, तो वो स्थान छोड़ के मैं क्यों जाऊं। हम लोग तो अपना आसानी से अपना स्थान छोड़ के प्रदेश चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए और कुछ करने के लिए, हम अपने मूल स्थान पर इतना प्रेम नहीं करते, हमको जहाँ चकाचौन दिखाई पड़ता है वहां पर भाग जाते हैं हम लोग, फिर बाकी सब हमारा मूल, हमारा स्रोत सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन देवताओं को पता है, आप लोगों को पता है कि पता नहीं, मालूम नहीं मुझे, लेकिन किसी भी देवता को ब्रज में एंट्री नहीं है। कोई भी देवता ब्रज में केवल भगवान को कुछ समय के लिए मिलने के लिए आ सकते हैं, और चप्पल वगल उतार के अपने वाहन सब उतार कर ब्रज के बाहर उतार कर पैदल आना पड़ता है उनको, भगवान से अगर कुछ काम से मिलना है तो। और किसी भी देवता को यहाँ पर रात का निवास का स्थान नहीं है, नो अकोमोडेशन अवेलेबल, तो दिन दिन में आके चले जाते हैं, ये हकीकत है। और आप सब लोग बरसाने में अच्छी तरह अकोमोडेशन लेकर रात दिन रहते हो, यहां पर महाप्रसाद खाते हो, ब्रह्मा जी को महाप्रसाद उपलब्ध नहीं है। एक बार आए थे वो, भगवान जमुना किनारे भोजन कर रहे थे, उनको लगा कि अभी हर रात भोजन करने के बाद जमुना जी में हाथ धोते हैं और हाथ में कुछ ना कुछ लगा होता है ना, तो वो महाप्रसाद फिर वो जमुना जी में जाता है। बोले कि ठीक है हम बुद्धि लगाएंगे, क्योंकि उनके पास चार दिमाग है ना और वो भी सबसे हाईली क्वालिफाइड, हाईली क्या कहते हैं उसको, सूक्ष्म और एलिवेटेड दिमाग है उनका, जिसमें चार दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किया है कि पूरा ब्रह्मांड को निर्माण करते हो। तो वो दिमाग से उन्होंने सोचा कि मैं मछली बनूंगा और जैसे हाथ से कुछ गिरेगा ना तो खा लूंगा उसको। तो मछली बनकर जमुना जी में तैर रहे हैं, अभी आएंगे अभी आएंगे, भगवान ने अपना पूरा कमलाकार रचना में भोजन किया और फिर उठे और हाथ धोने गए, झुक गए, देखा तो मछली घूम रही है। उसने क्या किया, दोना में पानी लिया और जमीन पे आके हाथ धोया इतना दुर्लभ है भगवान का महाप्रसाद, देवताओं के लिए भी इतना दुर्लभ है। और हम सब लोग तो महाप्रसाद आए दिन खाते रहते हैं, रोज मिलता है उधर शिवजी मंदिर में, मंगला का मिलता है, संजात भोग का मिलता है, हर जगह पे हर कुछ मिलते रहता है। इसीलिए देवताओं से भी भाग्यशाली जीवन मनुष्य का है। चार लक्ष्य योनि में जो मनुष्य योनि का वर्णन किया है ना, उसके अंदर देवता योनि भी 400 लक्ष्य योनि में ही आती है, लेकिन वो चार लक्ष्य सारी योनियों में देवता लोग भी आते, फिर भी उसमें मनुष्य योनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन गणेश जी काम्य वन में, पार्वती और शिव जी सारे ब्रज में, इनको ही केवल यहां पर फुल टाइम निवास दिया गया है, ओनली शिव जी और पार्वती जी। तो ये भी जानते हैं कि हमको बड़ी विशेष कृपा प्राप्त है, क्योंकि पार्वती जी ने और शिव जी ने, इसका ब्रह्म वैवर्त में वर्णन आता है, उन्होंने विष्णु जी से मंत्र प्राप्त करके पहले तो विष्णु का दर्शन प्राप्त किया, फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसा मंत्र प्राप्त किया जिसका जप दोनों ने मिलकर किया, और उसके बाद में त्रैमासिक व्रत किया, 90 दिन का व्रत किया उन्होंने, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन ब्रह्म वैवर्त में दिया गया है। वो त्रैमासिक व्रत पूर्ण करने के बाद में युगल जोड़ी राधा कृष्ण ने उनको दर्शन दिया है और उनको फिर कहा है यू कैन स्टे हियर परमानेंटली, आप दोनों यहाँ पर चिरंतन निवास कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर जगह जगह अमुक महादेव तमुक महादेव विराजमान है और अनंत प्रकार की देवी के दर्शन है यहाँ पर, नंदी बंदी, संकेत देवी, हाँ बोलते जाओ, ऐसे अनेक देवियों का हर जगह पर, हर स्थान पर देवियों का स्थान है यहाँ पर, और अद्भुत चमत्कारिक लीला है। तो ब्रजेश्वर महादेव को आप प्रणाम कीजिए, ब्रजेश्वर महादेव भक्ति देने वाले हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और भगवान की दिव्य सली है, यहाँ का कण कण भगवान की लीलाओं की दिव्यता से भरा हुआ है, अनंत कृपा इस रज में प्राप्त है। आदि शंकराचार्य ब्रज में आते थे तो उसके पहले बाहर भी जाते थे, तो उनका एक नियम था जहाँ वो बैठने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ कथा करने के लिए, उसके पहले वो शिष्य लोग आकर उस जमीन को खोदते थे फिर पूरा, और अपनी वाली रज डालते थे उसके अंदर, फिर पानी लिपटते थे, फिर अपना आसन रखते थे, फिर उस पर आदि शंकराचार्य जी बैठकर प्रवचन करते थे। कितनी क्रिया हो गई, खोदना, अपनी रज डालना, जल छिड़कना, मंत्र बोलना, फिर अपना आसन रखना। तो ब्रज में जब आए वो, तो शिष्यों को कहा आप कुछ नहीं करेंगे, ना खुदाई करेंगे, ना झाड़ू लगाएंगे, हाँ ना साफ सफाई करेंगे, ना जल छिड़केंगे, ना आसन रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप, हम आकर रज में बैठेंगे। और फिर आदि शंकराचार्य ने स्वयं इस रज का महात्म्य सुनाया है। तो ऐसी ये रज है, भगवान स्वयं जब अवतार लेकर आते हैं शंकर जी, तो भी लीला के माध्यम से अब इस रज का महात्म्य समझाते हैं। तो आप लोग भी इसका लाभ लीजिए और एक मिनट आँख बंद करके बैठिए, प्रार्थना कीजिए हृदय से, हरे कृष्णा।